नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री ने एनडीए गठबंधन को भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन बताया। कहा, एनडीए राष्ट्र प्रथम की मूल भावना के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी को कर्नाटक भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत मिली। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। कुश्ती में भारत के अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता और पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मैच आज शाम खेले जाएंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने इसका समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने श्री मोदी का नाम प्रस्तावित करते हुए कहा कि वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है।
जहां तक मेरी जानकारी है, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है।
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, ये सिर्फ एनडीए संसदीय दल की बैठक में बैठे नेताओं की नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम किया है कि देश समृद्ध हो और महाशक्ति बने। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है।
टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इफ यू मिस नाउ, वी विल मिस फॉरएवर। दैट इज वेयर वी आर हैविंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और हम अब सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे।
मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, सब पार्टी के लोग। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं बल्कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन है और हमारा लक्ष्य सभी निर्णयों में सर्वसम्मति बनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की जनता ने एनडीए को 22 राज्यों में सरकार बनाकर सेवा करने का अवसर दिया है।
एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते ये सबसे सफल अलायंस है।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सुशासन, विकास, आम नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। एनडीए के सभी नेतृत्व स्तंभों के बीच एक सामान्य बात है, वो है सुशासन। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एनडीए को लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला। उन्होंने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हमें जो सफलता मिली वो सराहनीय है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर, एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान, एनसीपी नेता अजीत पवार, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण, अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल सेक्युलर नेता एसडी कुमारस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट संसदीय दल की भी नई दिल्ली में आज बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी की संसदीय दल का नेता चुना गया। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद के लिए नेता के चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेतृत्व में विचार विमर्श जारी है। ओडिशा से पार्टी के सभी 20 नवनिर्वाचित सांसदों सहित राज्य के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। इस मुद्दे पर कल इन नेताओं का केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बेंगलुरु की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े मामले में सशर्त जमानत दे दी है। राज्य की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार को 40% की सरकार बताने के मामले में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। भाजपा विधान परिषद सदस्य बीएस केशव प्रसाद ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा सरकार पर भ्रष्ट होने का झूठा आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी इस मामले में जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरने और लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य में बार बार हो रही बिजली कटौती को बंद करने के लिए भी कहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी, सरकारी रिक्तियों को भरने में तत्परता की कमी, पेपर लीक और बार बार बिजली कटौती का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। कल एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागों में रिक्त पड़े पदों के संबंध में प्रस्ताव संबंधित चयन आयोग को भेजने को कहा है। साथ ही श्री योगी ने यह भी कहा कि नए गन्ना पेराई सत्र की शुरूआत से पहले गन्ना किसानों को पिछले सत्र का पूरा बकाया भुगतान किया जाए। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5% पर ही रखने का फैसला किया है। शीर्ष बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। समिति ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखने पर बल दिया। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। बैठक के बाद निर्णयों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि का संतुलन अनुकूल रहा है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता मुद्रास्फीति को 4% के भीतर रखने की है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति सामान्य मॉनसून के अनुमान के बीच खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर बनाए रखेगी। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
The GDP growth projection, we have increased it from 7% to 7.2%, and the inflation projection, the average for the year, we have retained it at 4% as 4.5% as it was in the last MPC meeting.
इस बीच शेयर बाजार के सूचकांक में आज शुरुआती गिरावट के बाद ब्याज दरों में बदलाव न करने के रिजर्व बैंक के फैसले के बाद उछाल का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1349 अंक यानी 1.8% की वृद्धि के साथ 72437 पर था, जबकि निफ्टी 382 अंक यानी 1.68% की बढ़ोतरी के साथ 23203 पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले दशक के दौरान शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री का ये बयान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में G20 देशों के बीच भारत के सर्वोच्च वृद्धि दर्ज करने के बाद आया है। भारत ने वर्ष 2015 के 11 विश्वविद्यालयों से बढ़कर वर्ष 2025 में 46 तक पहुंचकर रैंकिंग में 318% की वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए विद्यार्थियों, फैकल्टी और संस्थानों की सराहना की है। लोकसभा सचिवालय संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल विकसित कर रहा है। इसके तहत परिसर में विभिन्न स्थानों पर महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। पहले ये प्रतिमाएं परिसर में विभिन्न स्थलों पर स्थापित थीं। एक रिपोर्ट।
संसद के नए भवन के निर्माण के बाद संसद परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाई गई थी ताकि संसद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप इसे भव्य और आकर्षक बनाया जा सके। इस प्रेरणा स्थल को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि संसद परिसर में भ्रमण के लिए आने वाले लोगों को इन महापुरुषों की प्रतिमाओं का आसानी से दर्शन हो सके। इस प्रेरणा स्थल में महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन एवं उनके योगदान के संबंध में लोगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस सौंदर्यीकरण के काम के दौरान संसद भवन परिसर में किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें संसद भवन परिसर के अंदर ही सम्मानजनक रूप से स्थापित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में श्री ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में जीत की बधाई दी और सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों देशों के बीच रचनात्मक सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आगामी विश्व शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी का महत्व रेखांकित किया। उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर भारत की भागीदारी पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने म्यांमार में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र पूरे म्यांमार में बढ़ती हिंसा पर बेहद चिंतित है और म्यांमार सेना के हालिया हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कथित तौर पर रखाइन और सांगाइंग सहित अनेक इलाकों में कई नागरिक मारे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के अमन सहरावत ने कल शाम हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता। फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमन को जापान के री हिगुची से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-11 से हार का सामना करना पड़ा। इस रजत पदक से अमन को आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी रैंकिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मैच आज शाम पेरिस में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज गार्फिया का सामना इटली के जैनिक सिनर से होगा। दूसरा सेमीफाइनल नॉर्वे के कैस्पर रेड और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। कल महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड के इगा स्वातेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओलोनी से होगा। इस बीच भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। टेनिस में भारत के सुमित नांगल हेल ब्रोनर नेकर कप चैलेंजर टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल रात जर्मनी में खेले गए मैच में उन्होंने स्पेन के जेवियर बरेंको कोसानो को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज शाम सुमित का सामना रूस के इवान गाखोव से होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के एंड्रोस एंटोनसन से होगा। लक्ष्य सेन ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को पराजित किया। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप में कल रात मेजबान अमरीका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
दिल में है बच्ची का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
कल रात डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में इस बार के टी20 विश्व कप का पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमरीका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टाई पर समाप्त होने के बाद अमरीका ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पहले क्षेत्र रक्षण करते हुए अमरीका ने पाकिस्तान को 159 रनों पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बराबर कर लिया। फिर हुए सुपर ओवर में अमरीका ने 1 विकेट पर 18 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 1 विकेट पर 13 रन ही बना सका। कल दूसरे मैच में बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में स्कॉटलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आज शाम न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री ने एनडीए गठबंधन को भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन बताया। कहा, एनडीए राष्ट्र प्रथम की मूल भावना के लिए प्रतिबद्ध। राहुल गांधी को कर्नाटक भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत मिली। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। कुश्ती में भारत के अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता और पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मैच आज शाम खेले जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।